SBS हिंदी।
ऑस्ट्रेलिया में लगभग एक दशक में सबसे खराब इकोनॉमिक ग्रोथ का स्तर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इन कमजोर फिगर्स के बावजूद फेडरल सरकार अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा कर रही है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ताजा आंकड़ा बताता है कि अर्थव्यवस्था जून की तिमाही में 0.5% की दर से बढ़ी। ये आंकड़ा इसी समय पिछले साल से तुलना करते हुए है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP जून माह से पिछले 12 महीने में 1.4% रहा, जो मार्च महीने में 1.8% से कम है, जिसके कारण साल 2009 के बाद से ये सबसे खराब सालाना ग्रोथ रेट है। लेकिन ट्रेजरर जॉश फ्रेडनबर्ग आंकड़े के दूसरे पक्ष को दिखाते हैं।
The Australian economy has completed its 28th consecutive year of economic growth, a record that has not been matched by any other developed economy. It's a reminder of the remarkable resilience of the Australian economy and a repudiation of all those who have sought to talk it down.
वे कहते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये मुश्किल समय है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मूलभूत पक्ष मजबूत स्थिति में हैं।
We have maintained our AAA credit rating. Employment growth is at 2.6%, more than twice the OECD average and more than three times what we inherited when we came to office.
लेबर के ट्रेजरी मामलों के प्रवक्ता जिम चेल्मर्स कहते हैं कि कोएलिशन सरकार के तहत अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है।
If the treasurer thinks that these weak economic growth numbers are good, then he's even more out of touch than we feared. The government needs to bring forward a budget update so that they can fix up their forecasts and so they can responsibly fund a proper economic plan to get the economy moving again.
ग्रीन्स पार्टी के नेता रिचर्ड डी नेटले भी इस आलोचना का समर्थन करते दिखते हैं।
The Liberals portray themselves as good economic managers. What they've shown themselves to be are economic vandals. You've got Josh Frydenberg who's spinning the results, but the reality is our economy is spinning out of control.
हालांकि डॉक्टर चेल्मर्स का कहना है कि ये परिस्थिति सरकार के इकोनॉमिक प्लान के अभाव के कारण पैदा हुई है।
The economy has been weak for some time under the Liberals, and not just when it comes to economic growth, but also stagnant wages and high household debt and declining living standards.
लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कहते हैं कि आंकड़े इनकम टैक्स में की गई हालिया कटौती और बेहद कम इंटरेस्ट रेट को ध्यान में नहीं रखते। सरकार का मानना है कि इस सब का असर सितंबर की तिमाही में दिखेगा।
As we go into the back half of the year, things will improve. Let's not forget that the German and the UK economies have had negative quarters. So, and they're no slouches, those economies. An Australian economy, I believe, will continue to grow, and it'll grow because we're making these investments.
जहां तक ग्रोथ का सवाल है, वो कोयला, आयरन ओर और लिक्विड नेचुरल गैस के बढ़ते निर्यात, परिवारों द्वारा कम खर्च और कंस्ट्रक्शन यानी घर निर्माण के क्षेत्र में आई कमी के कारण इस स्थिति में है। डेलॉयट एक्सेस इकोनॉमिक्स के क्रिस रिचर्डसन कहते हैं कि घरेलू मुद्दों का ग्रोथ रेट कम रहने में ज्यादा योगदान है, जबकि दोष अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को दिया जाता है।
The bulk of the pain in the Australian economy has been from falling house prices. That's meant we've been more careful at the shops. It's meant we're not building as many new homes, apartments, and the like. And the drought. It's no longer front page news, but it's been nasty and it's been hitting the economy too.
धीमी आर्थिक ग्रोथ के आंकड़ों से पहले आई रिटेल में कम खर्च और रिजर्व बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट को 1% पर रखने की खबर के मायने भी अब साफ हैं। RBA का कहना है कि वे रेट्स को और कम कर सकते हैं यदि इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए आवश्यकता होगी। लेकिन श्री रिचर्डसन का कहना है कि शायद इसकी इस वक्त जरूरत नहीं है।
The Australian economy is slower, but it's not that slow. And the rainy day funds available to either the government or the Reserve Bank aren't endless. You might want to hang on to them until something bigger and nastier than we're facing today.
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को Facebook पर लाइक करें और @SBS हिंदी को Twitter पर फॉलो करें।